डिफेंस मंत्रा पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते हम बात करेंगे भारत के कच्चे तेल की आयात के बारे में, और अगर हम रशिया से तेल लेते हैं तो पश्चिमी देशों का इसका क्या रिएक्शन होगा और क्या इंडिया कहीं से भी सफर करेगा, जानते हैं नितिन गोखले से। नितिन, स्वागत है आपका, हमें टाइम देने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद आपका।
हम सबको ये तो पता है कि भारत अपने तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत भारी तरह से आयात पर निर्भर है। तो अभी ये कहा जा रहा था, ये मीडिया में कई रिपोर्ट्स आ रहे थे कि भारत ये सोच रहा है कि ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस उछले हैं, इसके चलते भारत रशिया से कम रेट में क्रूड ऑयल लेगा, और यूएस ने कहा है कि अगर वो ऐसा करेगा तो इंडिया विल बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री।
जी,
तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या भारत ऐसा करने वाला है?
देखिए, भारत ये जरूर करेगा, क्योंकि जहां से भी कच्चा तेल मिलता है, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, और जिसी भी मात्रा में मिलता है, वो भारत के लिए जरूरी है खरीदना। अगर वो कम दाम पे मिलता है तो और भी जरूरी है वो खरीदना। पर रशिया से जो भारत के पास आयात होता है कच्चे तेल का, वो भारत के जरूरतों में बिल्कुल 1% से भी कम है, क्योंकि रशिया से जो ऑयल आता है वो एक तो दूर होता है, उसके शिपिंग के चार्जेस ज्यादा देने पड़ते हैं, डिस्टेंस ज्यादा है
जी।
और रशिया से ट्रेडिशनली भारत ने ऑयल नहीं खरीदा है अभी तक। तो अब रशिया ने जब कहा कि मैं 20-22% डिस्काउंट में आपको तेल दूंगा, तो वो जो भी तेल देगा वो 2-3 मिलियन बैरल डे इतना वो दे सकता है, जो एक वेरी लार्ज क्रूड कैरियर एक होता है, जो टैंकर्स होते हैं ऑयल के जो पूरे समुद्र से आते हैं, वो एक टैंकर वो भर सकता है उस जो क्वांटिटी रशिया ऑफर करता है। अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर जो होता है वो भी नहीं फिल होता है, अगर उतना देते हैं रशिया जो तेल देती है जिस मात्रा में।
आपने कहा 2,000 से 3,000 बैरल
2,000 नहीं, 2 से 3 मिलियन बैरल,
मिलियन सॉरी,
मतलब 20 से 30 लाख बैरल उसमें क्रूड ऑयल आता है, अल्ट्रा जो लार्ज क्रूड कैरियर होता है उसमें।
हमारा डेली रिक्वायरमेंट,
हमारी डेली रिक्वायरमेंट है 50 लाख बैरल्स की।
अच्छा।
तो इनके पास से 20 या 30 लाख आते हैं तो उससे वो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जैसे रशिया का मेरे पास जो अभी फिगर्स मैं देख रहा हूँ, वो 2 से 3 मिलियन बैरल ओवरऑल सप्लाई कर सकते हैं अभी भारत को डिस्काउंटेड प्राइसेस में, इतना ही ऑफर किया गया है। जबकि भारत की डेली रिक्वायरमेंट 5 मिलियन बैरल्स की है। तो 5 मिलियन बैरल मतलब लोगों को बता दे कि 5 मिलियन मतलब 50 लाख हो गया
जी।
50 लाख बैरल हर दिन में भारत को उसकी रिक्वायरमेंट होती है, या 1,800 मिलियन बैरल्स की साल भर की रिक्वायरमेंट होती है। और हमारी जो आयात है कच्चे तेल की वो अन्य देशों से होती है, पश्चिमी एशिया के जो देश है, खाड़ी के देश जिसको कहते हैं, वहां से होती है। तो रशिया पे हम डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर हम लेंगे भी रशिया से तो उससे ज्यादा हमारे बिल में, जो इंपोर्ट बिल कहते हैं जिसको, साल भर का, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला।
हाँ, ये तो मिडिल ईस्ट से हम ज्यादातर तेल लेते हैं, ये तो मतलब
बिल्कुल
जनरल नॉलेज है,
जनरल नॉलेज है। पर उसमें भी इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे 1,800 मिलियन बैरल जो कहते हैं, 1,800 मिलियन बैरल पर ईयर हम जो तेल आयात करते हैं, उसमें से 23% इराक से आता है, जो फिगर्स मेरे पास है, 18% सऊदी अरेबिया से आता है, 11-12% यूएई से आता है। तो ये तीन तो पश्चिमी एशिया के देश हो गए, मिडिल ईस्ट के देश हो गए
जी।
8% नाइजीरिया से आता है, अफ्रीका से, और यूएस से 7-8% आता है। तो यूएस जो कहता है कि आप रशिया से मत खरीदिए, हम तो उनसे खरीद रहे हैं रशिया से बहुत ज्यादा तेल जो आता है। हमारा जो 85% हमारी जो रिक्वायरमेंट है ऑयल की, क्रूड ऑयल की, वो पूरी तरह से इम्पोर्ट होती है। और उसमें से ये मैंने आपको इसका ब्रेकअप दिया कि इराक से कितना आता है, सऊदी अरेबिया से कितना आता है, उस तरह से।
तो क्या आप समझते हैं कि ये फिर एक और प्रेशर टैक्टिक है जो वेस्ट इंडिया पे
बिल्कुल, ये डबल स्टैंडर्ड्स है वेस्ट के। वो कहती है कि आप रशिया से मत खरीदो, जबकि वो जानते हैं कि रशिया से हम ज्यादा तेल नहीं खरीदते हैं। इसके विपरीत अगर आप देखें तो यूरोप जो है, इसके भी फिगर्स मेरे पास है, यूरोप जो है रशिया से करीब करीब 84% रशिया का जो नेचुरल गैस है प्रोडक्शन होता है उसका 84% यूरोप उसको इंपोर्ट करता है।
ओके, लेकिन अभी जो सारे सैंक्शंस लगे हैं वेस्टर्न कंट्रीज ने जो रशिया पे, तो इसका क्या इफेक्ट?
कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो वो तो खरीद ही रहे हैं, वो तो पेमेंट तो वो रशिया को करेंगे, वो तो तुरंत बंद नहीं कर सकते। अगर आज अगर रशिया ने वो टैप बंद कर दिया नेचुरल गैस का जो पाइप से जाता है रशिया से यूरोप में, तो उनकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, उनकी पूरी जो रहन सहन जो उनका स्टाइल है वो सब बंद हो जाएगा। और जितना वहां से लेते हैं 2021 की जो अगर फिगर आप देखें तो 84% ऑफ रशियाज एक्सपोर्टेड नेचुरल गैस पाइपलाइन से जाता है यूरोप में। बाकी रहा 16% वो शिप से जाता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होता है। अब उसमें कौन से देश सबसे ज्यादा उसको इंपोर्ट करते हैं? जर्मनी, टर्की, इटली, बेलारूस, फ्रांस, और ये सब लोग कह रहे हैं कि हम सैंक्शन करेंगे।
नेटो कंट्रीज
हैं, नॉट बेलारूस पर बाकी सब बड़े नेटो कंट्रीज हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स तो कहने के लिए, तो मैं ये इसलिए इस मामले पे हम आज बात कर रहे हैं कि जो इंटरकनेक्टेड दुनिया आजकल हो गई है उसमें किसी भी एक देश को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है। आपने सैंक्शंस तो लगा दिए, आपने स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम्स को बंद कर दिया रशिया के लिए, वीजा कार्ड मास्टर कार्ड का पेमेंट रशिया में अब नहीं हो सकता है जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, पर आप गैस वहां से ले रहे हो, पैसा तो आपको देना पड़ेगा, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो ये लोगों को जानना जरूरी है कि भारत की डिपेंडेंस रशिया पे गैस या ऑयल के लिए नहीं है, बल्कि हथियारों के लिए है। डिफेंस में जो हमने पिछले सप्ताह जो हमने एक प्रोग्राम किया था उसमें हमने कहा था
जी,
तो ये जानना बहुत जरूरी है लोगों।
तो अगर ये है तो अभी ये भी तो सही बात है ना कि रशिया रुक नहीं रहा है, रशिया कंटिन्यू कर रहा है यूक्रेन में तबाही मचाना। तो मतलब ये इसका अंत क्या है, एंड गेम क्या देख रहे हैं आप?
एंड गेम अभी लोग कह रहे हैं कि ये जो जंग है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि रशिया को जो वहाँ ऑब्जेक्टिव्स थे रशिया के वो उन्होंने अचीव कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमको नेटो को ज्वाइन करने से रोकना था यूक्रेन को, वो हमने रोक लिया। अब यूक्रेन कह रहा है कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे,
लेकिन उसके बावजूद वो शेलिंग बॉम्बिंग कर रही है।
तो फिर यूक्रेन कहे, रशिया कहती है कि यूक्रेन कहे कि हम वार्ता के लिए तैयार है, शांति वार्ता चली रही है पैरेलली, तो जब तक वो फाइनल उसका डिसीजन नहीं होगा तब तक रशिया ये करते रहेगा। रशिया को इतने सालों के बाद वो प्रवोक होने के बाद उसने ये एक्शन लिया। मैं रशिया को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ या डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, पर इसके लिए जिम्मेदार सबसे ज्यादा वेस्टर्न अलायंस है, नेटो है, कि उन्होंने एक अंडरटेकिंग दिया था 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, तब उन्होंने कहा था कि हम नेटो को एक्सपैंड नहीं करेंगे, रशिया के बॉर्डर पे हम नहीं लाएंगे, और उसी के तहत यूक्रेन में जो न्यूक्लियर वेपन्स थे पुराने यूएसएसआर के उनको डिसमेंटल किया गया, उनको वहां से हटाया गया और कहा कि हम इनकी गारंटी लेंगे यूक्रेन की सुरक्षा की। अब यूक्रेन मांगता रह गया, सोचता रह गया कि नेटो वाले आएंगे, उनके बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे, वेपन्स आएंगे। वेपन्स तो दिए हैं, पर जो तबाही मच रही है यूक्रेन में इस जंग के कारण उसके जिम्मेदार यूक्रेन की जनता नहीं है, इसके लीडर्स हैं नेटो के और अमेरिका के, जिन्होंने रशिया को प्रोवोक किया और रशिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कर रहा है। तो इसमें ये कहना कि भारत ने रशिया का तेल नहीं लेना चाहिए, तो अगर इतना ही है तो फिर यूरोप वो गैस लेना बंद कर दे, फिर भारत को कहे, ये लोगों को जानना जरूरी है
जी। तो अभी ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये दुनिया को शायद दिख रही है मेरे ख्याल से, या दिखना चाहिए। और थैंक यू नितिन हमें ये थोड़ा पर्सपेक्टिव क्लियर करने के लिए। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कितना इंटरेस्टिंग भी है। तो थैंक यू नितिन, आप सबको हमारा सोशल मीडिया चैनल्स मालूम है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, जो सब्सक्राइबर्स हैं अपने दोस्तों को बताइए। मिलते हैं अगले हफ्ते, नमस्कार।